एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आज की दुनिया में शायद हम सबके लिए जरूरी है। जॉन पैल्फ्रे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रेटजी,
बौद्धिक संपदा।
हाँ, सुनने में थोड़ा सा क्या कहते हैं, भारी या कानूनी शब्द लगता है ना।
बिल्कुल,
लेकिन एक किताब शायद इसी सोच को बदलने की कोशिश करती है। मतलब आज देखो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है या कोई म्यूजिशियन है या कोई छोटा सा कारोबारी,
हाँ, जिसकी कोई खास रेसिपी हो,
हाँ, या फिर कोई बड़ी कंपनी नई टेक्नोलॉजी ला रही हो,
अपने आइडियाज, अपनी रचनाओं की रणनीति बनाना, ये सबके लिए जरूरी हो गया है अब।
बिल्कुल, पहले एक जमाना था जब लगता था कि ये सब तो भाई वकीलों का काम है या बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस का, पर अब वो बात नहीं रही।
सही,
आज का जो ये नॉलेज बेस्ड युग है जहां एक आइडिया, एक ब्रांड, उसकी कीमत अरबों में हो सकती है, तो ये समझना है कि अपनी इस अमूर्त संपत्ति मतलब इंटेंजिबल एसेट को कैसे संभालें, कैसे उसका फायदा उठाएं, ये तो एक बेसिक स्किल बन गया सबके लिए। ये सिर्फ कोई बचाव नहीं है,
नहीं, ये आगे बढ़ने का एक जरिया है।
एग्जैक्टली, एक शक्तिशाली जरिया।
तो आज इस ज्ञान गोष्ठी का मकसद भी यही है कि पैल्फ्रे की किताब के जो गहरे विचार हैं उन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझें, देखें कि ये आईपी, ये बौद्धिक संपदा के अलग अलग रूप क्या हैं, और सबसे जरूरी कि इनके बारे में सोचने का सही तरीका क्या हो सकता है, ताकि ये सिर्फ एक कानूनी झंझट न लगे,
हाँ, बल्कि एक स्मार्ट टूल लगे अपने लक्ष्य पाने का।
बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं लेखक से, जॉन पैल्फ्रे। आप बता रहे थे कि वो सिर्फ लॉ प्रोफेसर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका अनुभव बहुत बहुत फैला हुआ है। वो हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ा चुके हैं और वहाँ का जो मशहूर बर्कमन क्लैन सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी है उसके वो हेड भी रहे हैं।
अच्छा,
फिर वो एक नामी स्कूल फिलिप्स अकेडमी उसके हेडमास्टर भी रहे, और आजकल तो वो मैकआर्थर फाउंडेशन, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके प्रेसिडेंट हैं।
अरे वाह, मतलब कानून, टेक, एजुकेशन, समाज सेवा, ये सब उनके काम का हिस्सा रहा है।
हाँ,
तो ये चीज उनके नजरिए को थोड़ा खास बनाती होगी, है ना। वो सिर्फ कंपनियों के बोर्डरूम वाली बातें नहीं समझते होंगे।
सही, वो ये भी जानते हैं कि एक रिसर्चर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए या एक नॉन प्रॉफिट के लिए आईपी का क्या मतलब है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या मौके हैं, जमीनी हकीकत से जुड़े हुए लगते हैं वो।
हाँ, और शायद इसीलिए उनका नजरिया बैलेंस्ड है।
हाँ, बिल्कुल संतुलित है। वो आईपी राइट्स की जरूरत समझते हैं, ऐसा नहीं कि उसे नकारते हैं, लेकिन साथ ही वो ओपन सोर्स की ताकत मतलब जानकारी को खुला रखने, शेयर करने की ताकत को भी पहचानते हैं। वो किसी एक तरफ कट्टर नहीं है।
किताब में उन्हें स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिस्ट कहा गया है, मतलब वो प्रैक्टिकल रणनीति पर जोर देते हैं।
हाँ, प्रैग्मेटिस्ट। हाँ, उनका मानना है कि भाई सबसे अच्छा रास्ता क्या है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं और आप किस माहौल में हैं। कोई एक फिक्स जवाब नहीं है।
समझ गए, चलिए अब किताब पर आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रेटजी, इसका जो मूल विचार है वो क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है जो ये किताब कह रही है?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये है कि बौद्धिक संपदा को सिर्फ एक कानूनी कवच या प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करो प्लीज।
हाँ,
इसे एक एक्टिव, एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझो। एक औजार है ये, जिसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना है।
सही कहा, और ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये तो उन सब के लिए है जो कुछ नया बनाते हैं, नया सोचते हैं, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, सबके लिए। किताब का जो सेंट्रल सवाल है वो यही है कि आज के इस डिजिटल दौर में जब चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं,
हाँ, बहुत तेजी से,
तो आप आईपी के जो अलग अलग रूप हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, इनका इस्तेमाल कैसे करें ताकि आप इनोवेट कर सकें, दूसरों से आगे रहें, अपने बड़े लक्ष्य हासिल कर सकें।
और ये किताब इस सोच को भी तोड़ती है ना कि रणनीति का मतलब हमेशा यही होता है कि सब कुछ बंद रखो, ताला लगा के रखो।
हाँ, बिल्कुल तोड़ती है। पैल्फ्रे कहते हैं कि रणनीति एक स्पेक्ट्रम है, कभी ज्यादा कंट्रोल सही है तो कभी जानबूझकर चीजों को खुला छोड़ना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सही रास्ता क्या है वो आपके कॉन्टेक्स्ट पर, आपके हालात पर निर्भर करता है। और किताब एक बहुत बड़े बदलाव पर भी रोशनी डालती है। हम अब ज्ञान अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, नॉलेज इकोनॉमी में।
हाँ, ये तो हम सुनते ही रहते हैं।
आप सोचिए, 70 के दशक में बड़ी कंपनियों की ज्यादातर कीमत उनकी फैक्ट्री, मशीन, जमीन पर होती थी। शायद 80% फिजिकल चीजें, 20% अमूर्त।
अच्छा,
आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका की जो टॉप 500 कंपनियां हैं, S&P 500, उनकी 80% से ज्यादा कीमत अब उनकी अमूर्त संपत्ति पर है, उनके ब्रांड, उनके पेटेंट, सॉफ्टवेयर को, डेटा, इन चीजों पर।
80%! ये तो जबरदस्त है। मतलब आज के जमाने में असली ताकत आइडियाज में है, सिर्फ बिल्डिंग और मशीनों में नहीं।
एग्जैक्टली, ये पूरा सोचने का नजरिया ही बदल देता है।
बिल्कुल, चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, किताब के कुछ मुख्य हिस्से देखते हैं। पहला अध्याय है नया आईपी परिदृश्य। ये शायद इसी बदलाव की बात करता है कि अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल, आईपी अब सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट का काम नहीं रह गया है, ये पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी का सेंटर बन गया है। फिर अध्याय दो में पॉल फ्रे आईपी के चार मुख्य स्तंभ समझाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना है।
हाँ, ये चार क्या है?
पहला है पेटेंट। ये मिलता है नए आविष्कारों के लिए, जैसे कोई नई दवा हो गई, कोई मशीन या फोन का कोई नया फीचर।
अच्छा,
ये आपको एक लिमिटेड टाइम, आमतौर पे 20 साल के लिए उस पर मोनोपोली देता है, एक अधिकार। बदले में आपको दुनिया को बताना पड़ता है कि आपने बनाया क्या है।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा है कॉपीराइट। ये बचाता है रचनात्मक कामों की अभिव्यक्ति को, एक्सप्रेशन को, जैसे किताब, म्यूजिक, पेंटिंग, फिल्म, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर कोड भी।
अच्छा, एक्सप्रेशन को, आइडिया को नहीं।
हाँ, ये जरूरी पॉइंट है, आइडिया को नहीं बल्कि आइडिया को जिस तरह से एक्सप्रेस किया गया है उसे बचाता है।
ओके, तीसरा?
तीसरा है ट्रेडमार्क। ये आपके ब्रांड की पहचान है, नाम, लोगो, स्लोगन, वो सब। इसका मकसद है ग्राहकों को कंफ्यूजन से बचाना और आपकी कंपनी की रेपुटेशन बनाना। सोचिए किसी मशहूर कोल्ड ड्रिंक का लोगो या जूते का निशान।
हाँ हाँ, समझ गए, वो ट्रेडमार्क है। और चौथा?
चौथा है ट्रेड सीक्रेट। ये वो सीक्रेट जानकारी है जिसका बिजनेस वैल्यू इसी बात में है कि वो सीक्रेट रहे।
जैसे?
जैसे कोका कोला का फॉर्मूला या गूगल का सर्च एल्गोरिदम। जब तक आप इसे राज रख पाते हैं ये सुरक्षित है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती।
दिलचस्प। तो ये चार मुख्य औजार हो गए, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट। लेकिन जैसा आपने कहा, असली सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करें, कब ताला लगाएं, कब चाबी दें। यहीं पर वो अध्याय तीन वाला आइडिया आता है, रणनीति स्पेक्ट्रम।
हाँ, ये किताब का दिल है एक तरह से। पहले शायद सोच यही थी कि या तो सब अपना है प्रोप्राइटरी, या सब खुला है ओपन। पाल प्रे कहते हैं भाई ये सोच पुरानी हो गई। वो कहते हैं ये एक स्पेक्ट्रम है। एक छोर पर है प्रोप्राइटरी, मतलब मैक्सिमम कंट्रोल, सब कुछ पेटेंट कराओ, हर छोटे उल्लंघन पर केस करो, पूरा कब्जा रखो। शायद बड़ी फार्मा कंपनियां या डिज्नी जैसे ब्रांड इस छोर के पास होते हैं।
ठीक है, और दूसरा छोर?
दूसरा छोर है ओपन, जहां आप जानबूझकर अपने अधिकार छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स को देखिए, विकिपीडिया या क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाली चीजें। यहां मकसद होता है ज्यादा लोगों तक पहुंचना, मिलकर काम करना, एक कम्युनिटी बनाना।
तो या तो पूरा बंद या पूरा खुला।
नहीं नहीं, पॉल फ्रे का असली जोर इस बात पर है कि ज्यादातर कामयाब रणनीतियां इन दोनों छोरों के बीच में कहीं होती हैं, हाइब्रिड।
हाइब्रिड मतलब मिला जुला।
हाँ, मिला जुला। इसमें आप कुछ चीजों पर कंट्रोल रखते हैं और कुछ को शेयर करते हैं। जैसे आप अपनी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दूसरों को दे सकते हैं, शायद कुछ फीस लेकर, या फ्रीमियम मॉडल, बेसिक फ्री, एडवांस के पैसे, या दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर पेटेंट पूल बना सकते हैं जहां सब अपने पेटेंट शेयर करते हैं।
अच्छा,
सबसे सही रणनीति कौन सी है ये फिक्स नहीं है। ये आपके लक्ष्य, आपकी इंडस्ट्री, आपके कंपटीशन पर निर्भर करता है। कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करेगा।
ये बात पकड़ में आई कि कोई एक सही जवाब नहीं है बल्कि चुनाव करना है, ये बड़ी बात है। फिर अध्याय चार है डिजिटल युग में कॉपीराइट रणनीति। इंटरनेट ने तो खैर कॉपीराइट के लिए सब कुछ ही बदल दिया है।
बिल्कुल, किसी भी चीज को कॉपी करना, दुनिया भर में फैलाना सेकंडों का काम है अब तो।
हाँ,
और यहीं पर क्रिएटिव कॉमन्स यानी सीसी जैसे नए तरीके आए हैं। ये ट्रेडिशनल ऑल राइट्स रिजर्व्ड यानी सभी अधिकार सुरक्षित की जगह सम राइट्स रिजर्व्ड यानी कुछ अधिकार सुरक्षित का मॉडल है।
अच्छा, कुछ अधिकार, ये कैसे काम करता है?
ये बनाने वाले को ऑप्शन देता है कि वो चुने कि लोग उसके काम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। क्या सिर्फ शेयर कर सकते हैं? क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं? क्या उसे पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये शेयरिंग को लीगल और आसान बनाता है। आर्टिस्ट्स, राइटर, टीचर, इन सबके लिए बहुत काम का है ये।
दिलचस्प। और पेटेंट रणनीति के बारे में अध्याय पांच, आजकल वो डिफेंसिव पेटेंटिंग की बात होती है।
हाँ, यानी पेटेंट इसलिए लेना ताकि कोई दूसरा आप पर केस ना कर दे। और पेटेंट रोल की भी समस्या है, ये वो कंपनियां हैं जो खुद कुछ बनाती नहीं, बस पेटेंट खरीद लेती हैं और फिर दूसरों पर, खासकर छोटे इनोवेटर्स पर, केस करके पैसा कमाती हैं।
अरे, ये तो इनोवेशन के लिए बुरा है।
हाँ, ये काफी मुश्किल मुद्दे हैं, खासकर सॉफ्टवेयर पेटेंट के एरिया में। पाल्फ्रे बताते हैं कि कैसे IBM और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी एक मिक्स स्ट्रेटजी अपनाती हैं। वो हजारों पेटेंट भी रखती हैं, लेकिन साथ ही वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा भी लगाती हैं और अपना योगदान भी देती हैं।
अच्छा, दोनों चीजें करती हैं।
हाँ, ये दिखाता है कि पेटेंट का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं होता, आप उससे सहयोग भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री को दिशा दे सकते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम बना सकते हैं।
फिर आखिर में अध्याय 7 आता है, सब कुछ एक साथ लाना। इसमें क्या है?
एक तरह से समरी है। हाँ, एक तरह से ये एक फ्रेमवर्क देता है कि कोई अपनी IP स्ट्रेटजी बनाए कैसे। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल प्रोसेस है। कुछ स्टेप्स हैं।
क्या स्टेप्स हैं?
पहला, IP ऑडिट करें। पहले ये तो जानो कि आपके पास है क्या, कौन सी चीजें हैं जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती हैं।
ठीक है, पहले पहचानो।
दूसरा, मिशन और लक्ष्यों से जोड़ो। आप इस IP से चाहते क्या हो? मार्केट लीडर बनना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, या सिर्फ अपनी चीज सेफ रखनी है? तीसरा, परिदृश्य का आकलन करो। आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कानूनी माहौल कैसा है?
ओके।
चौथा, स्पेक्ट्रम पर अपनी पोजीशन चुनो। इन सब बातों को देखकर तय करो कि आप कंट्रोल और ओपननेस की स्पेक्ट्रम पर कहां खड़े होना चाहते हो, हाइब्रिड में कहां?
वो चुनाव करना।
और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, लगातार समीक्षा और अनुकूलन। IP स्ट्रेटजी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, आपके गोल बदलते हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी को रेगुलरली रिव्यू करो और जरूरत के हिसाब से बदलो।
ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा लगता है। अगर हम इस पूरे बातचीत और किताब के कुछ सबसे जरूरी संदेश, मतलब की टेकअवेज निकालने हो, तो वो क्या होंगे? मेरे दिमाग में पहला तो यही आ रहा है, IP सिर्फ कानून नहीं, रणनीति है। इसके फैसले टॉप लीडरशिप को लेने चाहिए, सिर्फ लीगल टीम को नहीं।
बिल्कुल सही। मैं जोड़ूंगा, नियंत्रण का स्पेक्ट्रम। ये सोचना बंद करो कि या तो सब बंद रखो या सब खुला छोड़ दो। असली खेल बीच का रास्ता खोजने में है और रणनीतिक रूप से शेयर करने में है, जो कई बार ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है।
तीसरा, शायद मिशन और लक्ष्यों के साथ अलाइनमेंट। आपकी IP रणनीति हवा में नहीं होनी चाहिए, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मूल उद्देश्य से जुड़ी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, IP उसमें कैसे मदद करेगा।
और चौथा, सुरक्षा से परे वैल्यू क्रिएशन। IP का काम सिर्फ चोरी रोकना नहीं है। सोचो किससे पैसे कैसे कमा सकते हो, लाइसेंसिंग, पार्टनरशिप कैसे बना सकते हो, इंडस्ट्री में अपनी पहचान कैसे बना सकते हो, वैल्यू कैसे बना सकते हो।
एक और बात भी है, एक्टिव मैनेजमेंट। प्रॉब्लम होने का इंतजार मत करो, पहले से सोचो, प्लान करो, मैनेज करो। और अगर हम इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सब बातें कितनी रेलेवेंट है।
अरे बहुत ज्यादा। सोचिए, इंडिया में कोई छोटा स्टार्टअप है, हाथ से बने यूनिक प्रोडक्ट्स बेचता है। वो शायद महंगा पेटेंट ना ले पाए शुरू में, लेकिन अपने ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क जरूर करा सकता है ना?
हाँ, बिल्कुल।
ताकि उसकी पहचान बने
और कोई और उसका नाम इस्तेमाल ना करे।
या मान लीजिए कोई भारतीय फोक आर्टिस्ट है, वो चाहता है कि उसकी कला दुनिया भर में फैले। वो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस यूज करके अपनी तस्वीरें या म्यूजिक ऑनलाइन शेयर कर सकता है। इससे लोग उसे देख सुन सकेंगे, नॉन कॉमर्शियली यूज भी कर सकेंगे और उसका नाम भी होगा।
हाँ, ये तो बहुत काम की रणनीतियां हैं जमीनी स्तर पर।
बिल्कुल।
किताब में कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं, जो दिमाग में रह जाती हैं। कुछ यादगार बातें शेयर करें?
हाँ बिल्कुल। जैसे एक जगह पाल्फ्रे कहते हैं, ज्ञान अर्थव्यवस्था में IP सिर्फ सुरक्षा के बारे में नहीं है, ये भविष्य के मूल्य निर्माण के लिए रणनीतिक स्थिति बनाने के बारे में है। मतलब सिर्फ आज को बचाने की मत सोचो, ये सोचो कि कल के लिए मौके कैसे बना सकते हो।
भविष्य पर फोकस, ये भी बहुत दमदार है। सबसे सफल कंपनियां केवल अपने IP पोर्टफोलियो का प्रबंधन नहीं करती, वे नवाचार और सहयोग के पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उन्हें व्यवस्थित करती हैं।
मतलब IP को अलग से नहीं, बल्कि अपनी पूरी इनोवेशन प्रोसेस, पार्टनरशिप, कम्युनिटी के साथ जोड़कर देखो।
हाँ, एक इकोसिस्टम की तरह। और ये वाला तो बिजनेस वालों के लिए बहुत जरूरी है। अपने प्रतिस्पर्धियों की IP रणनीतियों को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनकी व्यावसायिक रणनीतियों को समझना। अक्सर वे एक ही चीज होती हैं। सही बात है, IP और बिजनेस स्ट्रेटजी अब अलग नहीं है।
बिल्कुल। और ये वाला तो मुझे बहुत पसंद है, जो ओपन वाली सोच को दिखाता है। अपनी रचना को सार्वजनिक डोमेन में रखना भी उतना ही एक बौद्धिक संपदा रणनीति है जितना कि पेटेंट दाखिल करना। ये एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक सचेत विकल्प है, ना कि रणनीति का अभाव।
वाह, मतलब शेयर करना भी एक सोची समझी ताकत हो सकती है, सिर्फ मजबूरी नहीं।
एग्जैक्टली। ये सारे विचार हमें आईपी को लेकर जो बनी बनाई सोच है उससे आगे देखने को कहते हैं। ये सिर्फ वकीलों का काम नहीं है, सिर्फ डिफेंस नहीं है, और खुला होना हमेशा कमजोर होना नहीं होता।
तो इन सब बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में काम में कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल सुझाव?
हाँ, क्यों नहीं। जैसे अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो सबसे पहले पहचानो कि आपकी सबसे खास चीज क्या है। ब्रांड नेम, कोई यूनिक तरीका, कोई कोड। फिर सोचो उसे बचाने का सबसे किफायती और जरूरी तरीका क्या है। शायद शुरू में ट्रेडमार्क लेना पेटेंट से ज्यादा जरूरी हो। इन्वेस्टर्स से बात करते समय अपनी आईपी स्ट्रेटजी क्लियर रखो।
और कलाकारों या क्रिएटर्स के लिए अपने काम को शेयर करने के अलग अलग लाइसेंसिंग ऑप्शन समझो, जैसे क्रिएटिव कॉमन्स। तय करो कि आप लोगों को क्या करने की इजाजत देना चाहते हो। अपने नाम या स्टाइल को भी एक ब्रांड की तरह देखो। जरूरत पड़ने पर उसे प्रोटेक्ट करने का सोचो। और हाँ, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम डाल रहे हो उनकी आईपी पॉलिसी जरूर समझो।
बड़ी कंपनियों में मैनेजर्स के लिए आईपी को सिर्फ लीगल इशू मत समझो, उसे बिजनेस गोल से जोड़ो। क्या लाइसेंसिंग से एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है? अपनी टीम को आईपी के बारे में सिखाओ ताकि नए आइडिया सही टाइम पर पहचाने और प्रोटेक्ट किए जा सकें।
और रिसर्चर्स और एकेडेमिक्स के लिए अपनी रिसर्च पब्लिश करने के ऑप्शन देखो, ओपन एक्सेस या ट्रेडिशनल जर्नल। रणनीतिक रूप से सोचो आपके काम का ज्यादा इम्पैक्ट कैसे होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई घर पर खास मिठाई बनाता है, रेसिपी सीक्रेट है।
हाँ।
तो वो रेसिपी को ट्रेड सीक्रेट की तरह प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर मिठाई का नाम फेमस हो रहा है तो उस नाम को ट्रेडमार्क करा सकता है। ये उसकी स्ट्रेटजी है।
बिल्कुल। यहाँ कोई ऐप डेवलपर है जिसने एक यूजफुल टूल बनाया, वो चाहता है ज्यादा लोग यूज करें, उसे बेहतर बनाने में मदद करें, तो वो उसे ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत रिलीज कर सकता है। ये भी एक सोची समझी आईपी स्ट्रेटजी है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हम अक्सर आईपी को एक मुश्किल, डरावनी चीज समझकर उससे दूर भागते हैं या उसे सिर्फ बड़ी कंपनियों का मसला मान लेते हैं। ये कितनी बड़ी गलती है। ये तो हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो कुछ भी नया बना रहा है या सोच रहा है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह रही कि कैसे खुलापन या शेयरिंग डरने की चीज नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है। अगर सोच समझ कर किया जाए तो ये आपको कंट्रोल खोने के बजाय ज्यादा ताकत दे सकता है। कहीं ना कहीं शायद सबसे टिकाऊ आइडिया यही है कि आईपी एक टूलकिट जैसा है, औजारों का बक्सा। हमें इन औजारों को पहचानना है और उन्हें अपने मकसद के लिए सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखना है।
हाँ।
इसे सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएशन सेंटर की तरह देखना है। ये सोच का एक बड़ा बदलाव है मेरे ख्याल से।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।